భీమో అహివ దీర్ఘతమం విముంచ యతం గ్రిపాతం రణభూర్ణ సే మార్గం గదాయా శరతో విచిత్ర కిం వా కిం వా కా మతలబ్ బతాయే క్యా కియా క్యా హువా ఉస్కా బోలా కిస్కా భీమ భీమ కే బారే మే క్యా హువా కిస్ విషయ మే బోలా అఘేషు కృత అఘేషు అఘేషు కా మతలబ్ పాపీ అగ్ పాప కో కహతే హై तो पापियों की प्रति उसने क्या किया, पापियों के प्रति अथवा कौरव जो भीम के प्रति बहुत पाप के कार्य किए थे, विष देना पाप का कार्य है, आग में जलाना पाप का कार्य है, ये आतिताई है जिन्होंने ये सारे काम किए थे, तो उनके विषय में भीम ने क्या किया जरा बताइए। तो भीम के विषय में पूछ रहा हूं आपसे उद्धव जी कि वो पापियों के विषय में भीम ने क्या किया, अघेशु पापियों के बारे में, अघम अत्य अमरषा, भीम कैसा है बोला, भीम अति अमरषा है, अति अमरषा मतलब उसके वो अविजय वो उसके ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, वो अजय है। भीम तो निश्चित रूप से अजय है, उसको तो कोई मार सकता नहीं है, लेकिन उसका जो क्रोध था, दूसरा जो अघेशु अघम, अघम का मतलब उसको जो क्रोध था उसके अंदर, किसके प्रति, पापियों के प्रति जो क्रोध था, उस क्रोध का भीम ने कैसा क्रोध था उसके अंदर, वो कैसा था क्रोध, बोला हविवद, अविवद, अविवत मतलब अवि जैसा, अवि का मतलब सांप, सांप की तरह जो फुटफार कर रहा था, उसके अंदर विष भरा हुआ था, वो कई कब से विष भरा हुआ था, दीर्घतमम बहुत समय से, वो तो उस दिन ही मारना चाहता था, लेकिन युधिष्ठिर के रोकने से वो मानो के अपने दांत पीस कर उस विष को अपने अंदर भर के रखा हुआ था, उसने विमुच्य, अरे उस विष को निकाला के नहीं निकाला, वो क्रोध पूरा हुआ के नहीं हुआ उसका भी, ये पूछने की शैली ऐसी है कि भीम, क्या भीम के विषय में पूछना चाहता हूं, बताइए भीम ने जो पापियों के प्रति करना था, वो अपने क्रोध जो कई समय से, बहुत समय से अपने अंदर रखा हुआ था, उसको निकाला के नहीं निकाला, और फिर कैसा था भीम, अत्य अंगरी पादम रणे भूर्ण सेहे, सेहे का मतलब, अरे जब वो उसके चरण चलते थे युद्ध भूमि में, तो उसको कोई उसके चरणों के चलने को कोई सहन नहीं कर सकता, सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, और जो विचित्र रूप से वो गदा उसके हाथ में कोई देख लेता था, मार्गम जब आगे चलता था और हाथ में गदा होती थी, तो वो बहुत विचित्र होती थी और उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। चरतम विचित्रम, चरत्रम, चरतम मतलब जब वो गदा को चलाता था तो बहुत विचित्र था, ऐसा अद्भुत दृश्य होता था कि सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था उसके, वो अव्यजय था। तो अब भीम की महानता का वर्णन कर रहे हैं कि भीम कैसा था, बहुत वो अजय था, उसके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता था, एक तो वो अजय था, और दूसरा वो रणभूमि में उतरता था तो उसके चरण जहां चलते थे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती थी, और जब वो गदा चलाने लगता था, वो लगता था खेल रहा है, लेकिन उसके सामने खड़ा कोई नहीं हो सकता था, और वैसे तो कहीं और युद्ध करे तो और बात है, लेकिन ये तो विष पाल के बैठा हुआ था क्रोध के रूप में सर्प की तरह, और इन पापियों मेरे धृतराष्ट्र के पुत्रों दुर्योधन आदि की प्रति उसको बहुत ज्यादा क्रोध था, क्या उसने अपना क्रोध निकाल दिया, अब वो शांत है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। उस दिन हम जब राधा गोविंद महाराज यहां क्लास दे रहे थे सत्संग यहां, तो एक बात कही थी कि विदुर को मालूम था कि सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी भक्त जब आपस में मिलते हैं तो पुनः उस चीज को बार बार उस आवर्ती करने से भाव अंदर में और भगवान की प्रति ज्यादा गाढ़ होके होते रहते। जैसे भागवत को बार बार सुनने से हमारा रस बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं प्रहलाद महाराज की कथा करने कोई शुरू करा भी मालूम है अब क्या होगा, अब हिरण्यकश्यप को भगवान मारेंगे आकर, नरसिंह अवतार होगा, बार बार क्यों सुने। नहीं, दोबारा सुनने के समय उसके अंदर और रस आना चाहिए, नव नव रस उस समय आना चाहिए उसमें। तो भक्तों को बार बार वही चीज सुनने में बहुत बड़ा आनंद आता है। तो इस दृष्टिकोण से भगवान के एक और भक्त और भीम भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे, और भगवान श्री कृष्ण उसको तो झुककर नमस्कार किया करते थे, क्योंकि बड़े थे उसमें संसारी दृष्टि से। युधिष्ठिर और भीम को भगवान प्रणाम करते थे, अर्जुन से गले मिलते थे, और दो छोटे भाई नकुल सहदेव भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किया करते थे। तो ये मर्यादा ऐसी थी। और एक बार वो ब्रह्मास्त्र सामने से आ रहा था, सबको भगवान ने कहा झुक जाओ, ब्रह्मास्त्र, भीम बोला हम झुकने वाला नहीं है, ऐसे खड़ा। अब ये तो ऐसा क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए। भगवान उसके सामने खड़े हो गए, यही नहीं झुकता है तो मैं ही खड़ा जाऊं, इसकी रक्षा तो करनी है ना। तो इतना प्रिय था भगवान को कि वो नहीं मानता था तब भी भगवान उससे प्रेम करते थे, हम झुकने वाले नहीं है। उसका ये इसका भाव है कि वो रणभूमि है, वो झुकने वाला नहीं था, वो ब्रह्मास्त्र आए तो आए। तो क्षत्रिय का बहुत बड़ा विशेषता भीम की है। और फिर वायु पुत्र है भीम, देवता का अंश उसमें प्रविष्ट है। और ये पांडव वैसे भी भगवान के नित्य पार्षदों के अंतर्गत आते हैं, कोई साधारण जीव तो है नहीं। इस पांडवों के विषय में राधा कुंड का, जब रघुनाथ दास गोस्वामी उस कुंड जो था एक तालाब जैसा छोटा था उसको सुंदर बनाने का मन में विचार आया था, विचार तो मन से निकाल दिया, लेकिन बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ ने किसी संत को, कोई गया था अपना भेंट चढ़ाने, बद्रीनाथ ने उठा के रात को ही बोला ये सामान वापस ले जाओ, ये धन जाके महाराज उधर हमारे महात्मा बैठे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दीजिए, उनको आवश्यकता है। महीना एक चलकर राधा कुंड में दास गोस्वामी को आके वो दिया, तो उन्होंने राधा कुंड को तो बनाया बहुत सुंदर चौकुर। जब श्याम कुंड बन रहा था, रात को पांच पांडव प्रार्थना कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी को, कल सुबह जब कुंड की खुदाई होगी हम पांच वृक्षों के रूप में भगवान का लीला का रस आस्वादन करते हैं, हमको कल काटेंगे, आप कृपा करके इनको मना कीजिए हमको न काटे। तो सवेली उठ के दास गोस्वामी काम करने वालों को कहा ये पांच वृक्ष हैं इनको मत काटना, इनको रहने देना। तब श्याम कुंड चौकोर नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। तो इसके कहने का भाव ये है कि ये पांडव तो भगवान के नित्य पार्षद है। भगवान जैसे उद्धव जी यहां गुलम लता के रूप में रहते हैं उद्धव कुंड में, क्यारी में, उद्धव क्यारी में, तो ऐसे पांडव भी ब्रज भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो उनके विषय में कथा करना, भगवान के विषय में कथा करना दोनों समान ही है, और भगवान से भी भगवान की भक्तों की कथा का महत्व ज्यादा होता है। भगवान भक्तों के द्वारा प्राप्त होने में बहुत सुलभ है। तो इसका भावार्थ पढ़ते हैं, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब मैं पूछना चाहूंगा, विदुर जी कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर, हाँ ये तो हो गया युधिष्ठिर का, इसके बाद वाला कृपया कृपया मुझे बताइए, क्या विषैले सर्प तुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध छोड़ रखा है? जब वो युद्ध भूमि के पथ पर पांव रखता तो गदा चलाने के उसके अद्भुत कौशल को युद्ध भूमि भी सहन नहीं कर पाती थी, उससे से शब्द है सहन नहीं कर पाती थी। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, विदुर भीम के बल से परिचित थे, जब भी भीम युद्ध क्षेत्र में होता तो पथ पर उसकी पद चाप तथा उसके अद्भुत गदा कौशल शत्रु के लिए असह्य होते। बलशाली भीम ने बहुत काल तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। विदुर की जिज्ञासा थी कि क्या उसने अभी तक सताए हुए विषैले सर्प की भांति अपना क्रोध प्रदर्शित किया है। जब सर्प दीर्घकालीन क्रोध के पश्चात अपना विष छोड़ता है तो शिकार जीवित नहीं रह सकता। यहां प्रभुपाद जी के भावार्थ समाप्त हुई। या तो भीम के चरित्र के ऊपर बोलेंगे तो भी बोल सकते हैं, और आप चाहें तो इस महीने में दामोदर अष्टक के ऊपर चर्चा करें। क्या विषय आपका विचार? तो भीम के विषय में तो ये है कि बहुत बड़ा वीर था, और 100 पुत्र धृतराष्ट्र के अकेले ने मारे थे, 100 बेटों को अकेले ने मारे थे, और दुर्योधन आखिरी था, और दुर्योधन के साथ गदा युद्ध एक आमने सामने हो रहा था, उधर जल में छुपा हुआ था, बाहर निकला था, और वो तो सारे का सारा वज्र बना दिया था उसकी माता जी ने। जैसा भीम उसको मारे वो फिर उठ के उसको कुछ हो ही नहीं, लड़ते लड़ते थक ही गए, तो भगवान श्री कृष्ण से आकर पूछा इसका करूं क्या। उसको याद आ गया कि वो जरासंध के समय भी मेरा ये हाल था, 17 दिन तक 18 दिन तक लड़ते लड़ते भी वो मर नहीं रहा था, वो चीर फाड़ के फेंक दो फिर खड़ा हो जाए। तब भी मैंने पूछा था भगवान ने ऐसे कर दिया तो काम हो गया। आज देर मत करो, दे ले मारा जांग के ऊपर, तो जांग टूट गई, गिर गया, लड़ाई खत्म हुई। तो मां भगवान को मालूम था यही जगह केवल मैं नहीं तो ये काम किया था, कि कौन सी जगह कमजोर है ये मुझे मालूम है। तो मां के पास रात जा रहा था, वो सती थी गंधारी, तो गंधारी के लिए सती शब्द भी आया है भागवत में, कि वो पति के प्रति उसका इतना पतिव्रता धर्म पक्का था कि पता लगा कि पति आंखों से नहीं देखते तो आंखों के ऊपर पट्टी बांधती, विवाह से पहले ही पट्टी बांधती थी, पता लगा कि मेरा विवाह इनसे होना है धृतराष्ट्र से, उसकी आंखों से वो देखता नहीं है, तो बोला हम दुनिया को काहे के लिए देखे जब पति नहीं देखता है। तो दुर्योधन की प्रति बहुत स्नेह के कारण उसने एक दिन कहा कि बेटा तुम मेरे सामने आओ, मैं पट्टी खोल के तुम्हारे को एक बार देखूंगी, तेरे अंग वज्र जैसे हो जाएंगे। और दुर्योधन जा रहा था निवस्त्र जा रहा था, भगवान सामने कहां जा रहा है, मूर्ख है, रहते नंगा लग रहा, पागल है क्या? बोला माता जी के पास जा रहा हूं। बोला माता जी के पास तो बच्चा है अभी 2 साल का, ऐसे थोड़ी जाना होता है, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो कोई कह के भगवान ने अपनी माला दे दी, कुछ दे दिया, बोले कुछ तो वस्त्र बांध, लंगोटा तो बांध के जा मूर्ख। मां ने देखा बोला मूर्ख तुमको किसने ये मशवरा दिया, ये जगह तुम्हारी कमजोर रह गई। उन्होंने कहा यही तो कमजोर रह गई थी, बाकी सब ठीक है। फिर बलराम जी को बहुत क्रोध आया, बलराम जी आए कि मेरे दोनों शिष्य हैं, मुझे मालूम है बल में भीम ज्यादा है, लेकिन कला कौशल युद्ध में दुर्योधन मेरा शिष्य बहुत सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसने गलत जगह पे मारा है इसको, ये गलत। भीम को बलराम जी को क्रोध आया, भगवान मुझसे कह रहे इसने उस दिन आपने देखा नहीं था जब वो ऐसे जांग के ऊपर बैठने को द्रौपदी को कह रहा, तब कहा था ना इसकी जांग तोड़ूंगा, तो जांग तो तोड़नी थी ना, इसका वचन था, क्या करेगा बेचारा। और वैसे भी अब ये सारे ही समाप्त हो गए, इसके ऊपर एक बच्चे का तो क्या करेगा, इसको भी जाने दो बेचारे को। तो ऐसे करके ये शांति कर ली थी भगवान ने। तो ये भीम का अंतिम, दुर्योधन और भीम के ये युद्ध का वर्णन है, और भीम के तो पूरी महाभारत भीम के बहुत विचित्र विचित्र ऐसे अद्भुत उसके कार्य उसने किए हैं कि उसके युद्ध कौशल को असुरों से लेकर राक्षसों से लेकर सबको मारने का बहुत बड़ा विचित्र कार्य उन्होंने किया हुआ है। भीम कर्मा विरकोधर भगवत गीता में भी उस तरह से उसका वर्णन है। तो भीम को यहाँ प्रणाम करते हैं, अपनी गदा को वो शांत करके बैठ जाए, दामोदर अष्टक सुने उसको भी आनंद आएगा। दामोदर अष्टक 8 श्लोक भगवान श्री दामोदर जिनके उदर के ऊपर रस्सी बंधी हुई है, रस्सी के द्वारा जो बंधे हुए हैं दामोदर जी, उसकी महिमा में और प्रार्थना के रूप में सत्यव्रत मुनि ने पद्म पुराण के अंतर्गत इन 8 श्लोकों का नारद आदि के सामने वर्णन हुआ है। ये महीना भी दामोदर मास है कार्तिक में, इसमें प्रतिदिन भगवान के सामने दीप हम कहते हैं दीप दान। अब दान भगवान को क्या करना, असल में होता है कि दीप भगवान के निकट जाके दर्शन करने के लिए होता है, कि पहले लाइट तो नहीं हुआ करती थी ना, अभी भी दक्षिण भारत में मंदिर में जाएंगे तो दीप जलाएंगे और भगवान के मुख के सामने खड़ा करेंगे तो भगवान का मुख बहुत निकट से दिखेगा। तो दीप ले जाने का अर्थ है कि भगवान को बहुत निकट से जाकर देखना है, कैसे निकट से देखना है, जैसे सत्यमूर्ति मणि देख रहा है, आप देखिए वो कैसे देख रहा है, वो देख रहा है भगवान को, उस लीला का अवलोकन कर रहा है। वो अवलोकन करते करते पहला शब्द जो है वो मंगलाचरण है। मंगलाचरण का अर्थ होता है कभी कोई कार्य शुरू किया जाता है तो अपने इष्ट देव को प्रार्थना की जाती है कि ये कार्य संपन्न हो, इसमें कोई विघ्न बाधा न पड़े, कार्य को संपूर्ण रूप से निर्विघ्न पूरा करने के लिए मंगलाचरण होता है। अब देखिए भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने मंगलाचरण लिखा है, ओम अज्ञानति मरांदर से लेकर और हरे कृष्ण मंत्र तक, ये पूरा मंगलाचरण है। मंगलाचरण में तीन बातें होती है, एक तो होता है अपने इष्ट देव को प्रणाम, उसको प्रणाम करते हैं अपने इष्ट को, फिर विषय वस्तु क्या है जो मैं लिखा हूं इसके अंदर वस्तु क्या है उसका वर्णन करते हैं, और फिर आशीर्वाद होता है कि इसको अगर कोई पढ़ेगा सुनेगा तो उसको फल क्या मिलेगा। तो ये तीन चीजें मंगलाचरण के अंतर्गत आती है। तो पहला शब्द जो इस दामोदर अष्टक का है वो मंगलाचरण है, नमामि ईश्वरम, मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूं। कैसा ईश्वर? सच्चिदानंद रूपम। वो ईश्वर कैसा है? बोला सच्चिदानंद रूप है उसका, ये सच्चिदानंद उसका स्वरूप है। भगवान के स्वरूप दो प्रकार के कहते, निज स्वरूप, एक तटस्थ स्वरूप, तटस्थ लक्षण के से जैसे भगवान की लीला पार्षद आती तटस्थ लक्षण होते हैं, लीला भगवान की तटस्थ लक्षण है, पार्षद भगवान के तटस्थ, उनके द्वारा भगवान को जाना जाता है, लेकिन भगवान स्वयं का स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद विग्रह है। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा सच्चिदानंद विग्रह, तो ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। ईश्वर का अर्थ सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, ईश्वर का अर्थ है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब भगवान की महिमा गाना, भगवान की महिमा, भगवान कैसा है? सर्वशक्तिमान है, सब शक्तियां उनके अधीन है। और दूसरा अर्थ लिखा है एक जगत एक नाथ, ये प्रार्थना है कि पूरे जगत के आप नाथ हो, तो मैं भी जगत में हूं, मैं भी आपका आपको प्रार्थना करता हूं। और तीसरा अर्थ लिखा है निज प्रभु, निज प्रभु का मतलब आप भक्त, आप मालिक हैं हमारे, हम आपके भक्त हैं। तो ये भक्ति, तो ईश्वर के तीन अर्थ जहां सनातन गोस्वामी ने लिखे हैं, सर्वशक्तिमान, एक नाथ और निज प्रभु। तो इसको मैं प्रणाम करता हूं, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। कहां है ये ईश्वर को आप प्रणाम कर रहे हैं, कहां देख रहे हैं महाराज? तो कहते यशोदा भियो कुला दधाव मानम, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कहां? गोकुल ब्राजमानम, इस वक्त गोकुल में। वो भगवान जो सर्वशक्तिमान है वो इस वक्त गोकुल में है, गोकुल ब्राजमान, वो गोकुल को बहुत प्रकाशित कर रहा है। बोला कहां खड़ा है गोकुल में? बोला यशोदा भी उगला, और यशोदा के भय से उखल से कूद के भाग रहा है। कैसा भगवान है आपका? बोला यशोदा के, यशोदा भी यशोदा के भय से उखला धावना, उखल से कूद के भाग रहा है। बोला भाग रहा है कैसे देख रहे हो? कैसे बोला लसत कुंडलम, भाग रहा है ना, कुंडल आगे पीछे ऐसे लटक रहे हैं, मैं देख रहा हूं वो बहुत चमक रहे हैं, इसलिए लगता है भाग रहा है वो। अच्छा भाग रहा है, कुंडल लटक, चमक क्यों रहे हैं कुंडल, बहुत अच्छे बने हुए। बोला कुंडल किस चीज के, उसको छोड़ो, उसके गाल बहुत चिकने, वो गाल उसके इतने हैं कि भूषण भूषणम, जो आभूषण है उसको भी बहुत सुंदर बना देते हैं। तो आभूषण पहनने से हम सुंदर होते हैं, लेकिन भगवान को आभूषण पहनाया जाता है तो आभूषण सुंदर होता है। तो उसके कानों में कुंडल लटक रहे हैं और वो उखल से कूद के मां के भय से भागा है। बोला क्या हुआ? प्रामिष्टम अत्यंत दुर्तय गोपया, वो गोपी यशोदा ने पीछे से जाके उसको पकड़ लिया, प्रामृष्टम पीछे जाके उसको पकड़ लिया, माने उसको पकड़ लिया। क्या किया फिर? क्या हुआ? बोला रुदंतम, वो रोना लग गया, मां ने पकड़ लिया तो वो रोने लग गया। रुदंतम वो नेत्रम युगमेन मृजंतम, रो रहा है और आंखों को मल रहा है, दोनों आंखों को मल रहा है। बोला किससे? कपड़े से। बोला नहीं नहीं, कराम भोज, अपने हाथ जो है उनके पीठ से ऐसे आंखों को मल रहा है। बोला कैसी आंखें दिख रही है आपको? तब दीप से निकट जाके देखा, सातंक नेत्रम, बहुत भयभीत है आंखें, बहुत भगवान की आंखों में भय है। बोला किसको देख के भय हो रहा है? बोला मां के हाथ में लाठी है ना, उसको देख के भयभीत हो रहा है। हरे कृष्ण। हाँ, यह लाठी चल नहीं सकता इसके लिए। वो भयभीत क्यों है? वो लाठी को देख रहा है। हरे कृष्ण। कैसे रो रहा है, आपको क्या दिख रहा है रोते हुए उसका? बोला मुंह श्वास ऊपर नीचे, सांस ऊपर नीचे। त्रिकंठ रेखा अंक, और जो उनकी कंठ है ना बहुत सुंदर है, तीन उसके अंदर लकीरें हैं इतने ऐसे जैसे शंख के ऊपर होती, वो ऊपर नीचे हो रहा है। ग्रीव, जो ग्रीव है ना, ये ग्रीव नस को कह रहे हैं ऊपर नीचे। क्या हो रहा है उसमें ऊपर? बोला माला ने जो बहुत सुंदर मालाएं पहनी हुई है ना हीरे मोतियों की, वो ऊपर नीचे हो रही है। रो रहा है, क्यों रो रहा है, कैसे रो रहा है, ये तो पूरी भागवत से वो लीला वर्णन करना पड़ेगा। क्यों रो रहा है, कैसे रो रहा है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मां ने जब पकड़ा ना पीछे से, पीछे भागते को पकड़ लिया, पकड़ लिया तो लाठ में लाठी देख के, तुमने भांडा फोड़ा? हा, फोड़ा। तूने सबको मक्खन लुटाया? अभी नहीं, लाठी को दूर फेंको, अभी नहीं। मां ने देखा ये बड़ा भयभीत है तो लाठी फेंक दी। मां ने लाठी फेंक दी। जिन बड़ा ऐसे सातंक नेत्र के, इसके भयभीत आंखें क्यों है? भगवान ने कहा मेरे सामने कोई आ जाए तो उसका काम क्रोध सब शांत हो जाना चाहिए। ये मां को क्रोध आ रहा है मेरे सामने, भगवान ने बोला ये क्या, मेरी शक्ति खत्म हो गई, भय हो गया, क्या हुआ? मेरे सामने कोई भी आता उसका भी क्रोध खत्म हो जाता है, और ये मेरे सामने मेरी मां को, मेरे ऊपर ही क्रोध आ रहा है। तो भगवान को भय हो गया आंखों में, इसलिए भयभीत आंखें भगवान की दिख रही है। ऐसा भाव भक्तों ने भगवान के प्रति, की आंखें उनकी बड़ा भयभीत आंखों से भगवान की ओर। बोला ये ऐसे रो क्यों रहा है? ये तो आपने कहा सच्चिदानंद रूप है, ये ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, तो रोने की क्या जरूरत है? बोला इति दृक स्वलीला आनंद भी कुंडे सघोषम, अपने घोष गोकुल के निज भक्तों को आनंद देने के लिए ड्रामा कर रहा है, उनको सुख देने के लिए कर रहा है, उसको रोने की जरूरत नहीं है। बोला क्यों ऐसे कर रहा है मानू? तो कहते हैं एक थोड़े दिन पहले मां ने कहा कि तुमने मिट्टी खाई है, मुंह खोलो तो मुंह के अंदर पूरा विश्व देख लिया। मां ने कहा इसको पता नहीं क्या हो गया है। दो चार दिन के बाद दूध पीते हुए मुंह खोला तो विश्व अंदर देख लिया। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं है मां, समझ ले कि मैं भगवान हूं और मेरे को कमरे में बंद करके 1 से 4 बजे तक ताला लगा ले, 4 बजे बिस्कुट और पेस्ट्री अर्पण करे आकर कि तुम्हारे को भोग लगेगा। अरे ऐसे तो ऐसे नहीं, मेरे को पकड़ के अंदर बंद कर देगा भाई, भगवान समझ ले। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई लीला करूंगा, मां समझे कि मैं उससे डरता हूं, वो मेरे को पालेगी तब मैं पलता हूं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बात करते, ये दो लीलाएं अभी जो घटी थी ना, तो भगवान ने मन में आया कि अब ऐसी कोई लीला करनी चाहिए जिससे मां को ये बिल्कुल याद ही नहीं रहे कि कोई चमत्कार मैंने दिखाया है, वो समझे कि मैं छोटा सा बच्चा हूं, बहुत मां से डरता हूं। तो ये डरने वाली लीला किस लिए की? इति दृक स्वलीला आनंद भी कुंडे सघोषम, अपने घोष, अपने गांव वालों को, अपने कैसे प्रेमी है ये जिनको ये आख्यातम ये दिखाई है? मतलब कैसे है? तदयेश अग्नेशु, तदयेश ये इसको जानते हैं कि ये ईश कैसा है, उसके बारे में जानते हैं। भक्ति जितत्व, ये भक्तों के द्वारा जीता जा सकता है, इनको ये मालूम है। ये किसके सामने ऐसी भगवान लीला करते हैं? जिनको ये मालूम है कि ये भगवान अजीत है, इसको कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन भक्तों के द्वारा ये जीता जा सकता है। भक्तिम जितत्व, भक्त उसको जीत सकता है। भगवान और भक्त के बीच में जब ही भी स्पर्धा होती है आगे बढ़ने की, तो भगवान एक लिमिट तक आगे जाते हैं। भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के बीच में भी दोनों को अपने वचन की रक्षा करने की स्पर्धा हो गई। भीष्म ने बोला मैं तो आज कृष्ण को अस्त्र उठा के रहूंगा, और भगवान ने तो पहले से वचन किया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब ऐसी स्थिति आई युद्ध में, तो भगवान ने कहा मेरा वचन टूट गया तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले ही लोग मुझे चोर कह ही रहे हैं। मेरे ऊपर तो लोग जो भी कहे, कभी तस्कर कहते हैं नवनित तस्कर, रोज गाते हैं सुबह। तस्कर किसको कहते हैं? स्मगलर को। बोला मुझे चोर स्मगलर पहले क्या, अब कहेंगे क्या वचन तोड़ दिया क्या फर्क पड़ता है, हमारी लिस्ट पहले से लंबी है। ये भागवत है इसके वचन टूट गया तो लोग भक्त कोई नहीं बनेगा, मेरा ग्राहक ही सब चले जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएगा। तो ऐसे जब स्पर्धा दोनों के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में होती है, तब भगवान हार जाते हैं, भक्त जीतता है, और भक्त के भगवान की हार में भगवान की जीत होती है, उसमें भगवान की महिमा हो जाती है। ये भगवान अब यशोदा में और भगवान के बीच में स्पर्धा हो गई। स्पर्धा क्या हो गई? ये तो सुबह दही मंथन कर रही थी, दिवाली के दिन स्वयं यशोदा बैठ के बाकी काम करने वालों को छुट्टी दे दी थी, अथवा दूसरे काम में लगा दिया था, अथवा तीसरा कारण ये कहते हैं कि रोज आके गोपियां कहती है हमारे मक्खन घर में चुराता है, तो क्या मक्खन अच्छा नहीं बनाती होंगी ये दासियां, मैं खुद बना लेती हूं आज, अपने बच्चे के लिए मैं ही मक्खन बना लूं ना, रोज रोज दूसरे घर क्यों जाता है, मक्खन टेस्टी नहीं है इसलिए जाता होगा ना, तो आज मैं ही मक्खन बना लेती हूं। और मक्खन बनाने से पहले माता जी बहुत, सुबह कितने बजे उठी, 4 बजे उठ गई, नहाया, नहाने के बाद अलमारी के अंदर जो सबसे सुंदर साड़ी थी, पीले रंग की रेशमी, थोड़ा गेरुआ और पीला रंग था रेशमी साड़ी को पहना मान है, अब भगवान का काम करने जा रही है ना, भगवान आएगा गोद में बैठेगा तो कपड़े तो बहुत अच्छे पहनने चाहिए ना, और जूड़े के अंदर बहुत सुंदर फूल सजाए हैं, कानों में कुंडल है, हाथों में बहुत सुंदर सुंदर कंगन डाले हैं, रतन जड़त, और यहां करधनी बांधी है कमर के ऊपर, भगवान के काम के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। हम कहीं शादी मुरादी में तो घर के अंदर जाना होता है, बाहर तो बहुत सज के जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो रात के सोए हुए कपड़े पहन के आ जाते हैं मुर्दे वाले। ये माँ यशोदा सिखा रही है कि भगवान के दर्शन के जाना चाहिए तो सुंदर से सुंदर बन के जाना चाहिए। तो माँ बहुत सुंदर ये वस्त्र पहना हुआ है, 3 काम कर रही है, मुख से भगवान के गुण गीत गा रही है, जो भगवान की लीलाएं घटित हो चुकी है पूतना आदि तृणावत आदि के वध की, उसकी उसके 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 गीत बना रखे हैं। किसी की स्मृति सदा रखनी होती है ना, तो उसके लिए कविता बनाई जाती है, स्वयं न बनाए तो किसी कवि से बना रखते हैं और फिर उसको गाते रहते हैं, तो उसको विश्रमण नहीं होता है। तो एक तो माँ मुख से भगवान के गीत गा रही है और मन में क्या चिंतन कर रही है, लाला सोया हुआ है ना, काम कर लूं, उठेगा तो काम करने देगा नहीं, उठेगा तो फिर काम में हाथ डालेगा, रुकावट डाल देगा, और उठे तो ताजा मक्खन तैयार होगा तो ना खिला लूंगी। तो मन से भगवान का चिंतन कर रही है, मुख से भगवान का गुणगान कर रही है, और शरीर से दही का मंथन कर रही है। 1.5 किलो दही नहीं लिया था दूध वाले से यशोदा ने, आधा किलो दही आधा किलो दूध देना भैया, ऐसा नहीं था, ये तो 10-10 किलो से अधिक दही था, बड़ा मटा था, इतना वो मिट्टी का मटका था, और वो यशोदा की सास के जमाने का था, और बड़ा चिकना मटका था, और वो जब चला रही थी तो बड़ा जोर लग रहा था, और जोर लग रहा था सारा मुख लाल हो गया था, यहां से ऊपर जोर लग रहा है तो मुख लाल होता है, तो पुराने जमाने में माता जी लोग लाल करने के लिए कोई सुर्खी पाउडर नहीं लगाते थे, सुबह सुबह मंथन करते थे, बड़ी सुंदर लगते थे, ऐसा लाल हो जाता था, कोई चिंता कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, ये काम कर ले तो कुछ और करने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है कि वक्ष स्थल सुंदर करने के लिए माता जी के लिए सबसे अच्छा मंथन करना है, बहुत अच्छी ये एक्सरसाइज है, और ताजा घर में मक्खन भी तैयार हो जाएगा बहुत अच्छा, और वो मक्खन बच्चे को सुबह खिला के स्कूल भेजोगे तो बच्चा आके आपके पांव छुएगा और सेवा करेगा, और डेयरी का फ्रिज में रखा हुआ मक्खन खिलाओगे तो पत्थर मारेगा वो पत्थर जैसा तो होता है कहते मक्खन तो ऐसा नरम होना चाहिए जिसके अंदर बाल भी निकल, इतना उंगली नरम मक्खन, वो मक्खन नरम होता है वो जो आप निकालते हो, वो डेयरी वाला मक्खन नरम होता है क्या, नहीं होता है ना, तो कठोर हो जाएगा आदमी, और क्या करेगा, वो खाएगा तो ऐसा ही हो जाएगा। मां मंथन कर रही थी ऐसे, अब भगवान ने एक वचन किया हुआ है, क्या वचन किया है, मुझे कोई याद करता है तो मैं वहां आ जाता हूं, ये सोया हुआ कन्हैया बोलता है वो माँ मेरे को याद करिए मैं सोया रहूं तो फिर तो मेरी बात झूठी हो जाएगी, यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जब मेरा गुणगान करता है मैं तो आ जाता हूँ। भगवान उठ के वहां से आ गए, माँ को देखा नहीं, आ गए तो बोला माँ भूख लगी है, लेकिन माँ क्या कर रही थी, माँ जब मंथन कर रही थी ना वो दिन मंद उस दिन बोलना था, तो चूड़िया माँ की कर रही थी, और दही जो था बम बम, अरे कीर्तन हो रहा, वो मृदंग बज रहा था और ये करताल बज रही थी, तो माँ कीर्तन कर रही थी और गा तो साथ में रही थी, तब कीर्तन में आवाज कैसे किसी का सुनने में आएगा। तो कन्हैया ने देखा ये सुन नहीं रही है माता जी, तो एकदम मंथनी को ऊपर से पकड़ लिया, अब काम रुक गया, काम रुक गया। तो मां ने देखा, अरे मां मुस्कुराई, तो बड़ा शक्तिशाली हो गया, बड़ा होशियार हो गया, काम रोक दिया, मेरे को मेरे अपनी ओर ध्यान मेरा अपनी ओर खींच लिया और फिर बल हो गया, मक्खन अच्छा है हमारा, शक्ति आ गई बच्चे में ना, पकड़ लेता है ना, बड़ा शक्तिशाली हो गया, अच्छा है। ऐसे प्रेम से बच्चे को लिया गोद में मां ने और स्तनपान कराने लगी, कपड़ा ढक दिया थोड़ी देर मटके के ऊपर और दूध को आराम करने, मंथन को थोड़ी देर के लिए रोक लिया और बच्चे को दूध पिलाने शुरू कर दिया मां ने। और लिखा है भागवत में, ओ मां बच्चे के मुस्कुराते हुए मुख को देख रही थी। बच्चा जब दूध पी रहा था तो बड़ा बड़ा मुस्कुरा रहा था कि उसकी जो अभीष्ट वस्तु है उसको मिल गई थी, कि वो दूध मां का पीना और मां मां के अंदर दूध भी उसका प्रेम ही है जो पिघल जाता है, मां के हृदय में जो वात्सल्य प्रेम है वो पिघल के दूध बन जाता है। तो मां जब दूध बच्चे को पिलाती है तो बच्चे में बहुत बड़ी आसक्ति होती है, वो बच्चे का मुख देखती है और बच्चा मां का मुख देखता है, तब बच्चे और मां के बीच में बहुत गहरा संबंध स्थापित होता है, तब 100,000 माताओं के बीच में भी बच्चा अपनी मां को पहचानता है। ये उस वक्त का संबंध स्थापित हुआ होता है। और तब मां पुराने जमाने में कहा करती थी, बच्चा मेरे दूध की लाज रखना। अब तो क्या कहेगी, कौन से दूध की है, मामूल दूध की लाज रखना ये प्राग डेयरी के दूध की लाज रखना वो लाज रखने वाला जमाना ही चला गया। लेकिन वो जो घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है मां और बच्चे का ना, ये केवल उस वक्त होता है जब मां उसको दूध पिलाती है। अब दुर्भाग्य से माताएं बहुत कम दूध पिलाती हैं। पुराने जमाने में कहते थे, अब भगवान की आयु क्या है, जब ये लीला घटी है 3 साल से 1-2 महीना ऊपर है, क्यों 3 साल 3 महीने में तो गोकुल छोड़ के आ गए थे वृंदावन में, तो भगवान 3.5 साल का है ये समझ लो, तो 3.5 साल के बच्चे को मां यशोदा दूध पिलाती थी। हमारे नीति शास्त्र पुराने जमाने में कहते थे, पद्मनी वो स्त्री है जो 5 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाए। पद्मनी उस स्त्री को कहते हैं जो 5 वर्ष के बड़े बच्चे को भी दूध पिलाए। फिर 2-3 साल कामनी कहते हैं और फिर और भी कुछ नाम है, लेकिन हमने नया नाम एक ढूंढा था थोड़े दिन पहले, कि जो बोतल में पिलाती है वो पिसाचनी है। बोला क्यों, क्यों ऐसे है? बोला देखो, बच्चा जब दूध पिएगा बोतल उठाएगा तो दूध पीते पीते बोतल को देखेगा, मेरी माँ बड़ी अच्छी है, मेरी माँ, तो दूध पीते पीते बोतल में उसका भाव आ जाएगा, इसको इतनी अच्छी बोतल लगेगी, 8-7 साल हुआ होगा तो कोको कोला की बोतल के पीछे भागेगा, तो बोतल से इतना प्रेम हो गया, 15-18 साल का होगा तो अंग्रेजी शराब वाली बोतल पीना शुरू कर, जानी वक्कर से प्रेम हो जाएगा, और 30-35 में बीमार होगी अस्पताल जाएगा तो डॉक्टर भी बोतल लगाएगा और उसी बोतल को देखते देखते मर जाएगा। तो ये मां जो बोतल से प्रेम करा देती है बच्चे का, उसका क्या होगा, उसको क्या कहोगे? इसलिए फिर उस दिन हमारे को मन में ऐसे आया, बोतल से दूध पहले कभी पिलाया नहीं, बोतलें थी नहीं पहले, मरते मरते मां क्या चम्मच लेके कटोरी से पिलाती थी तो भी गोद में तो वापस बच्चे को बिठा, वो फिर बच्चा चमचा ही होगा ना कम से कम वो देखेगा चम्मच को हरे कृष्णा। प्रेम से दूध पिलाना चाहिए माताओं को, इससे ये संदेश मिलता है यहां से। हाँ, वो राजा, वो नंद की नंद गहनी, नंद महाराज राजा थे गोकुल के, वो महारानी भी दूध पिलाना 3 साल से बड़े बच्चे को दूध पिलाने में आनंद ले रही थी। अब तो ये बड़े घरों की तो इसलिए कहती है, हमारा दूध पिलाने से सुंदरता कम हो जाएगी, नहीं नहीं बहुत सुंदरता बढ़ेगी, बच्चों को दूध पिलाना चाहिए प्रयास करके, जितना प्रयास हो उतना पिलाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो मां दूध पिलाते हुए आनंद बच्चा और मां ले रहा था, इतने देर में मां की दृष्टि बच्चे से हटी, चूल्हे के ऊपर चढ़े हुए दूध के ऊपर गई और मां ने बच्चे को नीचे उतारा, उस दूध को नीचे रखने के लिए चली गई। भगवान से दृष्टि हटती है ना तो कुछ न कुछ उपद्रव जरूर होता है। भले भगवान के संबंध दूध का संबंध भी भगवान से है, हमारे आचार्य ने इसको माता को दोषी नहीं कहा है, माता ने तो कृष्ण के लिए ही दूध वो बनाया था, लेकिन वो बच्चे कृष्ण के साथ भोजन कर रहे थे अगासुर को मारने के बाद, बड़ा आनंद ले गए, थोड़ी देर कृष्ण से दृष्टि हटा के हमारे बछड़े कहां गए, बछड़ों की दृष्टि की तो कृष्ण हाथ वो तो कृष्ण से अलग हो गए। जब भी भगवान से दृष्टि हटा के किसी और की तरफ दृष्टि करेंगे तो थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी। तो अब परेशानी क्या हुई, मां उधर गई और भगवान ने कहा मैं भूखा हूं, मुझसे ज्यादा उसको दूध प्यारा है। क्रोध आया और लाल होंठ को सफेद दांतों से दबाते हुए और उधर पड़ा हुआ था पत्थर जब मसाला पीसने का उठा के दे मारा भांडे को, भांडा टूट गया और सारा मत दही जो मक्खन वाला बह गया। बह गया तो थोड़ा डर लगा कि ये तो गलती हो गई, अब तो डर मां मारेगी, पता लगा तो वहां से भाग के दूसरे कमरे में गया। भूखा हूं ना, अभी तो भूख लगी, कुछ खाना चाहिए। उतारा मक्खन कैसे खा, ये तो कल का है, कौन खाएगा, तो खट्टा है, किसके दो, बंदरों को दो। बंदर तब तक बंदर आ गए, फेंक रहा है बंदरों को ऐसे मक्खन, भगवान तो बंदरों को उखल के ऊपर बैठा हुआ मंथन खड़ा खड़ा मक्खन फेंक रहा है ऊपर से, उतारा है, कौन खाएगा, कल का नहीं खाएंगे हम, ताजा अभी का खाना था, माँ ने तो अभी तक निकाला नहीं। यशोदा वहां से लौटी, देखा अरे मटका फूटा हुआ है। यशोदा हंसी, अरे इतना बदमाश हो गया है, मां को हंसी आ गई और फिर मन में एक भय भी हो गया, तो इसने अभी तो भांडा तोड़ दिया है ना, मटका फोड़ दिया है, तो डर लगा होगा उसको, डरेगा तो कहीं भाग ना जाए वन में, देखो तो सही गया था, पता करो। पता क्या करती है, ऐसे देखती है तो पांव पड़े हैं बहुत सुंदर सुंदर गिरे हुए दही के ऊपर, उन पांव को देखती देखती दूसरे देखा, अरे बंदर सामने, बंदर तो माँ ने लाठी उठा दी, अरे बंदर है सामने, लाठी तो हाथ में होनी चाहिए ना, बंदर है सामने, बंदर देखो लाठी नहीं होगी तो बंदर आप कुछ भी करो आपकी जेब में हाथ डाल देगा। तो मां ने लाठी उठाई और मां उधर जा रही है कमरे की तरफ, बंदरों ने लाठी देखी, बंदर ऐसे सब उठ गए ऊपर चले गए पेड़ पे, भगवान देखा ये बंदर क्यों भाग रहे, दही नहीं मक्खन नहीं खा रहे, मां को पीछे आते देखा, कूद के भागा, वो कूद के भागा, वो देख रहा है मुनि यशोदा भी उखलाद धाव मानम भाग रहा है और यशोदा उसके पीछे भागने लगी। अब ये दो रूम का फ्लैट तो था नहीं नंद बाबा का, और आंगन तो एक दो किलोमीटर में लंबा चौड़ा था, अंदर 9 लाख गाय आया करती थी, उसको बांधने के लिए घोसती थी, और पेड़ थे ऐसे, बड़ा उद्यान था, बड़ा खुला घर था, पुराने जमाने में घर छोटे नहीं हुआ करते, बच्चे घरों के अंदर दौड़ दौड़ के खेलते थे, इसलिए शाम को भोजन करके सो जाते थे। अब दो फ्लैट रूम, दो कमरे वाले फ्लैट में न दौड़ सकते हैं न भाग सकते हैं, किसी चीज को हाथ लगाएंगे तो बोला हाथ मत लगाओ बच्चा सारा दिन, तो रात को क्या करेगा, नींद तो आएगी नहीं, एनर्जी बर्न हुई नहीं, फिर टीवी बैठता रहेगा 12 बजे तक देखता रहेगा। भागने दौड़ने का कोई आपके पास प्रबंध हो तो बच्चा तो सो जाए ना जल्दी, थक जाए तो इसलिए थकने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए फिर आंखों के ऊपर 4 आंखें करके चश्मा चढ़ा के फिर जीना पड़ता है। तो ये माता जी भाग रही है बच्चे के पीछे, और भागते भागते पीछे से पकड़ लिया तो बच्चा रोने लगा, यहां तक तो हमने बात की, अब भगवान लीला कर रहे हैं अपने इन भक्तों को आनंद देने के लिए। अब मां ने क्या कहा, दामोदर भक्ति बधाम, दामोदर भक्ति के द्वारा बांधा गया, मां ने कहा इसको आज बांध के रखूंगी, उसको बोले ठीक है लाठी फेंकती ना, मारती नहीं हो कोई बात नहीं, तेरे को आज बांध के रखूंगी, तू अपने मित्रों के साथ खेलने नहीं जा सकता, नहीं जाओगे खेलने आज, यही रहो। और अंदर में मां के भाग क्या भाव था, अभी खाया कुछ नहीं है, भूखा है, कहीं चला गया वन में तो भूखा कैसे जाएगा, थोड़ी देर बांध के रखती हूं, काम करके आ जाऊंगी तब इसको खिला लूंगी। बच्चे को डर भी दे रही है, अंदर से प्रेम का भाव भी है। अब बांधने के लिए उखल में तो रस्सी बांध दी, अब भगवान के कमर में ऐसे करके ऐसे लाए तो यहां आए रस्सी छोटी हो जाए, अब भगवान बंधन में तो आने वाले है नहीं, तो भगवान की जो विभूति शक्तियां हैं, संकल्प, भगवान ने संकल्प किया मेरे को नहीं बंधना, संकल्प शक्ति भगवान की, भगवान ने सोचा मेरे को नहीं बंधना है, तो भगवान के अंदर भगवान की विभूति शक्तियां ऐसे ही प्रवेश हो गई, मां जैसे रस्सी को यहां लाए दूसरी रस्सी लाओ, दूसरी उसके अंदर जोड़ी, यहां लाए फिर छोटी हो गई दो अंगल, तीसरी लाई चौथी लाई पांचवी लाई, रस्सियां घर की सारी पूरी हो गई। तो गोपियां जो बड़ी खड़ी थी, यशोदा इसके भाग में नहीं लिखा है बंधन, छोड़ो ना, हंस रही थी, जैसे यशोदा हंसने लगी, नहीं लिखा है ठीक है, आज शाम भले हो जाए सारे शहर की रस्सियां लाऊंगी लेकिन इसको बांधूंगी जरूर। अभी तक तो भगवान भय के कारण और कहीं देख रहे थे, मां को तरफ देख नहीं रहे थे। जब मां ने ऐसे कहा ना, नहीं आज नहीं छोड़ूंगी, शाम तक इसको बांध लूंगी, तो भगवान ने मां के चेहरे के ऊपर देखा, मां के मुख को देखा। भगवान ने मां के मुख को क्या देखा, मां के काले घने बाल, असली काले घने घने बाल थे। अभी 80 साल की थी ना माता जी, लेकिन असली काले लिखा है बाल वहां, तो असली काले काले बाल माता जी के, उनके अंदर से जैसे बादलों से वर्षा होती है ऐसे पसीने की बूंदें गिर रही है, मां का जूड़ा खुल गया है, फूल नीचे गिर रहे हैं, बड़ा परिश्रम। भगवान के हृदय में एकदम करुणा उत्पन्न हो गई, अरे मेरी मां ने बहुत परिश्रम कर रही है, मां ने तो निश्चय कर लिया है बांधने का। भगवान के हृदय में क्या करुणा उत्पन्न हुई, वो सारी विभूति शक्तियां वहां से अपने आप लुप्त हो गई, और मां ने ऐसे करके ऐसे गांठ लगाई तो गोपाल बंध गया। अब भगवान ने कहा, अभी तक तो हमने कहा नहीं बंधूंगा, लेकिन मां और हमारे बीच में कॉम्पिटिशन बहुत तेज हो रही है, तो अब हम हार जाते हैं, भले मां हमको बांध ले। तो भक्त जितत्व यशोदा के द्वारा गोपाल जीत लिया गया, और इसको देख के सत्यवत मुनि कहता, मैं बार बार वंदना करता हूं ऐसी लीला करने वाला। फिर दो श्लोकों में प्रार्थना करते हैं, अब वो प्रार्थना वो करेंगे तो आपका प्रसाद समाप्त हो जाएगा। इसको यहां छोड़ें और क्या करें। हरे कृष्णा। इसके बाद वाला चौथे श्लोक में क्या लिखा है, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदीवा। अब प्रार्थना क्या करता है, हाथ जोड़ के कहता है, आप तो वर दाता है ना, सबको जो चाहे वो वर देता। भगवान ने कहा, हाँ तुम्हें चाहिए मोक्ष? बोला, मोक्ष ना, मोक्ष नहीं चाहिए। अरे संसार में तो चार चीजें सब मांगते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तुम्हें मोक्ष दे रहा हूं। पांच प्रकार का मोक्ष है, कौन सा वाला चाहिए बोलो, सर्लोक्य चाहिए, स्वरूप चाहिए, सामिष्य चाहिए, कौन सा चाहिए? मेरे जैसा रूप चाहिए, मेरे जैसा लोक चाहिए, मेरे सामने बैठो, मेरे जैसी शक्ति चाहिए, मेरे अंदर समाना चाहते हो, क्या चाहिए? बोला, नहीं चाहिए मोक्ष। बोला, इससे आगे तुम्हारे को वैकुंठ दे दूं? मोक्ष न वधीवा, मोक्ष से अधिक कुछ देना चाहते हो? वैकुंठ भी नहीं चाहिए, और भी कोई वर नहीं चाहिए। अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए, आकर क्या मांगते हो? नाथ वपु गोपाल बालम, हे मानाथ, आपका ये जो गोपाल का जो ये बाल रूप है ना, सदा मन से ये सदा मेरे मन में बसा रहे, बस मुझे ये चाहिए, न मुझे वैकुंठ चाहिए, न मुझे मुक्ति चाहिए। गोपाल तेरा ये बाल रूप है जो ये मेरे मन में बसा रहे, बस यही मेरी इच्छा। अच्छा, क्या तुमको इस बाल रूप में अच्छा लगता है? किसको तुमको देखने में बड़ा आनंद आ? बोला, ये मुखम अंबुज, ये तुम्हारा मुख जो है कमल जैसा ना, अंबुज कमल जैसा जो जैसा मुख जो है ना, ये बहुत सुंदर है, और इसके ऊपर कुंतल ही, ये जो तुम्हारे गुंघरियाले बाल है ना, स्नग्ध ही, ये बड़े चमकीले, इसके चारों ओर जो पड़े लटक रहे हैं ना, ये लगता है तो कमल के ऊपर भंवरे मंडला रहे हैं ये मुख, और इस मुख के अंदर गोपी मुह चुंबितम, और गोपी के द्वारा जो तुम्हारे कुगालों के ऊपर चुंबन करती है ना ये यशोदा, उनके बीच में ये लाल लाल बिंब रक्ताधरम, तुम्हारे ये जो लाल लाल होंठ है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते। क्या चीज तुम्हें पसंद आती है? बोले, तेरा ये मुख जो कमल जैसा है, जिसके चारों ओर गुंघराली बालों की अलकाएं अलकावली ऐसे सुभाशोभित हो रही है, सुंदर लाल होंठ तो चमक रहे, लेकिन मां के तुम्हारे गालों के ऊपर चुंबन है वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस ये मेरे मन में बस जाए, यही मेरी इच्छा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और लक्ष लाभ, भाई आप लाख वरदान दो, मैं नहीं लूंगा, लाख वरदान भी नहीं चाहिए, केवल ये चाहिए। मानो भगवान ने कहा, ठीक है आंखें बंद कर लो, देख लो। अब लालच बढ़ गई, बोला, आंखें बंद करके नहीं, एदे इक्षी दर्श्य, ऐसे मेरे खुले आंखों के सामने खड़े हो जाओ। अब ध्यान में देखने का नहीं, अब सामने देखने की लालसा मन में हो गई। अब जब सामने देखना है तो प्रार्थना करनी है, तो प्रार्थना क्या कर रहे, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। आप देव है ना, आप दामोदर, आप अनंत है, आप विष्णु है, आप सब जगह समाये हुए हैं, आप प्रसिद्ध प्रभु। हे प्रभु, हमको भी थोड़ा प्रसाद दे दो, हमारे सामने भी आ जाओ। हे प्रसिद्ध प्रभु, हे प्रभु, प्रसाद दो, मालिक हो ना, मुझे ही प्रसाद दो, सब जगह हो तो मेरे सामने भी आ जाओ ना। अरे क्यों, क्यों भाई क्यों, तुम तो क्या समझते हो मुझे बंधे रखोगे यहां, मैं तुम्हारे सामने सारी उम्र रस्सी में बंधा रहूं क्या? तो वैसे नहीं नहीं क्या लिखा है, दुख जाल आबधि मग्नम, मैं दुख के समुद्र में डूब रहा हूं, दुख जाल अवधि समुद्र में मग्नम, मैं डूब रहा हूं, मैं दुख के समुद्र में डूब रहा हूं, कृपा दृष्टि वृष्टि, आप कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर एक कर दो ना, दीन मैं बहुत दीन हूं, आप दीनानाथ हैं, मैं दीन हूं, आप दीन वत्सल है, कृपा दृष्टि कर दो, अनुग्रहण मेरे ऊपर अनुग्रह करो, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुख में डूब रहा हूं, मैं दीन हूं, मैं अज्ञानी हूं, मेरे ऊपर एक कृपा करो भाई, क्या कृपा करूं, एदी अक्षी दर्शे, मेरे आंखों के सामने आप दर्शन दे दीजिए। मन में आया तो दर्शन इतना आसान तो नहीं होता है, अब भगवान ने कहा ऐसे थोड़ी मिला, बोला मिलता क्यों नहीं है, कुबेर आत्मा जाओ ये तो बद्ध मूर्ति है, अरे तब तो आप बधे हुए थे, वो कुबेर के तो बदमाश बेटू को भी आपने अपनी प्रेम भक्ति दे दी, भक्ति भाजाओ कृताओ च, अपनी प्रेम भक्ति आपने कुबेर के तो बेटों को दे दी थी, नल कुबेर और मणिगर्भ को, प्रियच्छ मैं फिर वही इच्छा करता हूं क्या, प्रेम भक्ति स्वकम, आपकी प्रेम भक्ति मुझे भी दे दो। भगवान बोला ठीक है फिर मुक्ति लो, बोला मुक्ति तो नहीं चाहिए न मोक्ष ग्रहो, मोक्ष नहीं चाहिए, प्रेम भक्ति अपनी दे दो। मानो भगवान ऐसे उसका देख के कह रहे, मैंने कहा उनका उद्धार किया था, रसी ने किया था ना, पीछे बंधी हुई थी उखल में, उसने खींचा था ना, मैं तो आगे था, बोला कोई बात नहीं रसी ने किया, रसी को नमस्कार करते, नमो क्या ना, नमस्ते अस्तु दामिने, अरे रसी तुम्हारे को नमस्कार है, तुमने कमाल कर दिया, नमस्ते अस्तु दामिने स्फुरित दामिने, बोला क्यों भाई तुम चमक क्यों रही है, बोला उधर अस्त भगवान के उधर को बांधी हुई है ना, बोला उधर कैसा है, बोला विश्व धामिने, ये पूरा जिसके पेट में समा जाता है, पूरा विश्व जिसके पेट में समा जाता है, पिरले के समय सारे जीव भगवान के अंदर चले जाते हैं, अरे जिसके विश्व में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसको एक रस्सी ने बांध लिया है, तो इससे हम उधर को भी प्रणाम करते हैं। भगवान बोला इनको करते रहो, लेकिन मुझे प्राप्त करने के लिए कुबेर के बच्चों को मैंने भक्ति दी, क्योंकि नारद ने उनके लिए सिफारिश की थी, नारद उनकी जमानत दी थी कि ये सुधर जाएंगे तो आप इसको भक्ति दे दो, तो भक्त जब कहता है तब उद्धार होता है। बोला कोई बात नहीं, हमें मालूम है किसको प्रार्थना करनी है आपकी भक्ति लेने के लिए, बोला बताओ, बोला तदीया नमोस्तु राधिकाय त्वदीया प्रियाय, बोला मुझे मालूम है अब मैं जमानत में डालता हूं, किसकी सिफारिश लाता हूं, बोला नमस्ते अस्तु क्या राधिका नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, मैं राधिका को नमस्ते करूं, वो तो आपको प्रिय है ना, बस उसके चरण पकड़ लेंगे तो आप मिल जाएंगे, हमको अभी मालूम हो गया। तो ये बहुत बड़ा अंतिम भाव प्रकट करते हैं, राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय, उनके साथ तो आप अनंत लीला रास लीला आदि करते हो, बस कृपा एक मेरे ऊपर करो कि ये बाल गोपाल का रूप मेरे मन में बसा रहे, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, बस आपको तो मेरी यही प्रार्थना है कि ये बाल रूप मेरे हृदय में सदा बसा रहे। तो इन 8 श्लोकों में भगवान के बाल रूप के प्रति बहुत बड़ा भाव प्रकट किया है सत्यव्रत मुनि ने, और विशेष रूप से भगवान अपने भक्तों के द्वारा प्रेम से बांधे जा जाते हैं, ऐसे हृदय में भगवान निवास करे ये भाव करके प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, डर गया। श्री प्रभुपाद की नमस्ते अस्तु धामिने स्फुरदीप धामिने, हरे कृष्णा।